उसकी बात नहीं, इस समय आपका ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा और आप उस परमात्मा के पास ले जाओगे। यो अभ्यास योग से जाते हैं। यहाँ लिखा गीता जी ने कि आठवें अध्याय का आठवां श्लोक, अभ्यास हे अर्जुन, अभ्यास योग से युक्त, युक्त माने पूरा परिपक्व हो जाना, जिसका अभ्यास योग पूरा शब्द सुरत अभ्यास, शब्द और सुरत का अभ्यास जिसका हो गया, अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से और किसी की भगवान की देवी देवता की पूजा न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ, क्योंकि हम आपको जो सारनाम देते हैं उस परम पुरुष का मूल नाम होता है, आप जब उसको स्मरण करोगे आपकी आपका टारगेट उसके चरणों में होगा, अर्थात आपका जो वह टिकट बनेगा तो उसी लोक का बन जाएगा जिसमें आपने जाना है, वो जहाज में, तो वहां आप जाते ही उसी में बैठा दिए जाओगे, क्योंकि वो टिकट आपकी पहले बन चुकी है। चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त होता है, अर्थात उस परमात्मा का भजन करो। रामानंद जी को सुना रही हैं कबीर साहब की, ये पढ़ो ये श्लोक, आप तो विद्वान पुरुष हो, और यही बात है जो जिन्होंने गीता जी को पढ़ रखा है उनको समझाना हमारे लिए कति आसान है। वो समझदार व्यक्ति होंगे तो नकारा नहीं करेंगे, अब बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिन्होंने गीता जी पढ़ कर नहीं देखा ना वेद उठाए, वो बहस करते हैं सुने सुनाए ज्ञान पर। एक सुने की बात है कि नकलोई गांव में मैं चला गया, बिदढाण गांव में, एक बिदढाण गांव है बिदढाण सोनीपत जिले में, वहां सत्संग करते थे। एक शास्त्री टीचर था, शास्त्री, उसकी पत्नी ने नाम ले रखा था, तो हम किसी और के सत्संग करने गए हुए थे, उसकी पत्नी ने कहा कि हम महाराज जी को मैं घर बनाना चाहती हूँ, तो मेरे पास आई। मैं बोला वे वो भगत जी अगर स्वयं आकर कहे ना फिर हम चलेंगे, तो हम चले जाओ, लाठी ठारो तेरे का नाचे तो गड़ा, तुमने क्यों लाई बुला कर फलाना करा, तेरे भी सर दर्द हो तो उसको अगर कहेगा हम चल पड़ेंगे। मैं बोले जी उसको मैंने अनुमति ले रखी है, नाटक बोला बाबू फिर भी देखो ऐसी बात नहीं, वो घर पे है तो बुला लाओ। वो आ गए जी दोनों दिन, अब चलो महाराज जी हमारा भी दर्शन दो, बड़ा अच्छा बोला, हम चले गए। तो वो नाम नहीं ले रखा था उन्होंने, मैंने उसकी उसकी पत्नी ने कहा जी कुछ थोड़ा बहुत समझा दो, मान जाता मैं उसको लागा समझान दी, कबीर साहब नो कबीर साहब नो, बोला जी मुझे सब मालूम है। अच्छा भाई कहते मेरे पास चारों लोग रखे हैं, तो मैं भी सहम गया, पहले तो उसको वैसे स्वाभाविक सा ज्ञान देना चाहता था, भाभी फिर इसने ज्ञान तो है, फिर मैंने दूसरे ढंग से शुरू कर दिया। मैं बोला आपने यजुर्वेद पढ़ा होगा, उसके पास में जहाँ के 32वां श्लोक आपने पढ़ा है। नो बोला मैंने पढ़ा कोई ऐसा नहीं है, चारों वेद रखे पर पढ़ा कोई नहीं है, फिर तुम्हें बेरा टट्टू का बॉडी बीच तो बड़ा अलग है। मैंने उसको बोले करना कर ली कही, और मैंने कहा तुम नाम ले ले, बोला ना नाम तो थरी चेली नहीं रहेगी, मैं तो कोई नहीं। मैं चलो भाई ठीक है, तू इसने बख्श देगा वो भी तेरा शुक्र से, इसको बाद ना बनेगा तो भी मैं शुक्र मनाऊ तेरे तुम्हें गदा बन गया सही, इसका तो उदाहरण दे कम से कम। अब की हो सर कुछ दिना के बाद गलत गना डेढ़ महीने के अंतर्गत एक बार टीचरों की कोई रैली थी, और वो बैठा ट्रक में, और वो ट्रक सीधा इधर आके ना सोनीपत बोर जो रहसी, और टकरा गया जी दूसरी ट्रक ट्रक में, और उस भगत जी की तीन जगह तकड़े टूटी, दो जगह तक टांग टूटी, बाह टूटी, और यहां जूता में चोट लगी। हमारा सेवक है उनके गांव का, वो उसे मिलने चला गया, सिपाही है पुलिस में, उससे वो लोग बोला संत राम गुरु जी की मिल लेंगे, बोला के बोला ना मिलूंगा मैं, बोला भाई तो गुरु जी आके मेरा काम मिलने से, बोला क्यों के बात, ने बोला आज उनकी कृपा से बचा हूं, मेरा जीवन नहीं था, मैंने तेनो खड़े दिखे आ गए, मैं नाम लूंगा। और कहा भाई ठीक है ईब तो यहाँ तो आ नहीं सकते, आप स्वस्थ होकर आ जाओगे जब नाम ले लिया। अब यहाँ क्या है कि उसकी पत्नी ने भगवान का आसरा ले रखा था, अगर वह भी शरण में ना होती उसका सत्यानाश होता, वो डेथ हो जानी थी उसकी, मर जाना था। एक भी घर का सदस्य कबीर भगवान की शरण में है, और वो बाधक नहीं बनते उसके मार्ग में, वो उसका पति या उसका कोई घर का सदस्य तो उनकी भी रक्षा मालिक कर देगा, जाएंगे पाकिंग होगा, बक्कल उतरेगा, दिन दो दिन ज्यादा लग सकते हैं बस। तो जी उसने तो घर आते ही, और मेरा वहां जाना हो गया, घर में पाठ है वो तो समेत तक बलस्तर ठाल लिया उसने। मैं बोला जी नाम दे दो। मैं बोला के बात शास्त्री जी, करड़ी चोट लागी। नो देखे मुश्किल से आगे झुक के पैरा में पड़ गया, रोए रोए डटे नीलते। ने बोला जी आपकी शरण में थे हम बच के, नहीं मेरा जीवन नहीं था। जो उसने नाम लिया और जल्दी ही स्वस्थ हो गया और दूना विश्वास बन गया उसको। तो ये बात है, हम जो है शास्त्रों जिन पढ़ रखे ना ये शास्त्र, उनको समझाना मेरे लिए कति आसान है, उन्हें गलत नहीं लगे ये बातें। जिन्होंने ना शास्त्र पढ़े हैं और सुने सुनाए संतों की अटकलों पर अटके हुए हैं, उनके लिए हम उनको समझाना हमारे लिए दुभर हो रहा है, क्योंकि वो सुनकर प्रसन्न ही नहीं है। न शास्त्रों का ज्ञान है उन संतों पर आधारित, जिन्हें शास्त्रों को बताए नहीं, अपने मनों की बातें बता रखी हैं। तो यहां लिखा है आठवें अध्याय का नौवां श्लोक, जो परमात्मा सर्वज्ञ सबका जानने वाला अनादि, अनादि कदेत सब पर शासन करने वाला, ओवरऑल कंट्रोलर, ओवरऑल रूलर, सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म सबका भरण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत प्रे सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप तथा ज्ञान स्वरूप ऐसे अचिंत स्वरूप का चिंतन करता है, वह भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में असल मन से योग बल के द्वारा भरकुटी के माध्यम से प्राणों को अच्छी तरह प्रविष्ट करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है, उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। उस परम श्रेष्ठ दिव्य माने अनोखे, पुरुष माने परमात्मा, यानी उस परम दिव्य परमात्मा को ही प्राप्त होता है। वो परमात्मा सत्पुरुष है, वो परमात्मा पूर्ण पुरुष है, पूर्ण ब्रह्म है, वो कबीर भगवान है। आठवें अध्याय का 22वां श्लोक बताता है कि अर्जुन संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है, संपूर्ण प्राणी जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त करने योग्य है। बस सीधी सी बात है, इसमें दो राय है कोई। वो परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त करने योग्य है, अनन्य यानी दूसरे की कोई भी साधना आस्था अपने मन में बिना हो, जैसे पतिव्रता होती है, एक इष्ट एक ही गुरु, गुरु और इष्ट को एक बना लो, द्वितीय भाव नहीं रहेगा आप में। अब रामानंद जी को समझा भगवान, आप क्यों ना उस भगवान की साधना करते। नो बोला भाई बात बताऊ आपसे, हमने ना तो कितने आज तक सुना था, ये पढ़ा जरूर था पर इतना विचार मारा था को नहीं कि और भी कोई भगवान से। तब कबीर साहब ने उसको समझाया कि ऐसे ऐसे काल भगवान है जो गीता में स्वयं कहता मैं सबको खाऊंगा, इस काल भगवान के अंतर्गत ये तीनों देवता ही इसके पुत्र हैं, और इनसे ऊपर निरंजन से ऊपर ब्रह्म से ऊपर एक परब्रह्म शक्ति है, परब्रह्म से ऊपर एक पूर्ण ब्रह्म शक्ति है, और वहां जाकर के अब आपका फिर मरण नहीं होगा। अब क्या पली लेते हैं वो, कहते हैं बच्चा एक बात बताऊं, अब क्या मैं हो गया बूढ़ा, 104 साल की उम्र होगी, अब 104 वर्ष तक तो मैं इस साधना में मंडा रहा तीन लोकाली में, अब उम्र का ना मेरा 2 दिन का हूं, 10 दिन का हूं, कि 1 साल वर्ष का हूं, 2 वर्ष का हूं, और वो भक्ति मेरे बने ना कदे मैं घर का रहूं ना घाट का, कहीं ऐसा ना हो मैं उसमें लग जाऊं, ये भक्ति मेरी फेल हो जा रहा। नहीं गुरुदेव, ये आपने बीए कर ली, आपकी बीए होगी, आपकी मैट्रिक होगी ना समझ लो, अब आगे की पढ़ाई और पढ़ो, ये आपकी ये तो पढ़नी थी आपने, इतना तो आपने करना ही था, अब आगे की यानी सतलोक का मैं मार्गदर्शन आपको बता सकता हूं। तेने बोला भाई इन्हों को ना मानू, मैं तो आंखों देखू ना जब यकीन हो। कबीर साहब कहने लगे अच्छा ऐसे करो, आप समाधिस्थ हो जाओ, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन का अभ्यास उन्होंने कर रखा था, समाधि लगाई, अंदर से जा रहे हैं, आगे जाके तीन रास्ते बन जाते हैं, एक जाकर के त्राहा बन जाता है, उसको त्रिवेणी बोलते हैं, एक जाती है राइट हैंड को, लेफ्ट हैंड को, लेफ्ट हैंड को जो जाती है, बाएं हाथ को एक नाड़ी जाती है, अंदर से वो नाड़ी बहुत सुरंग सी नजर आती है, जैसे तुरबीन होती है ना, छोटी सी चीज को इतना बड़ा, एक छोटी सी इतनी पाइप को इतना बड़ा सुरंग दिखाई देगी, इतना उसका लेंस होते है, ऐसे ही अंदर वो नाड़ी इतनी बड़ी नजर आती है। जब उस गुफाओं से वो चल रहे हैं, इधर से जाओगे ना स्वामी जी, यहां तो रुक गए, उससे आगे जब जाते हैं जब उनका शरीर अंत हो जाता है, इतने त्रिवेणी तक योग अभ्यासी वहां जाते हैं, वहां देखे नजारे ठाठ से वहां बैठे रहते। जब कहते हैं स्वामी जी यहां से इधर जाओगे आप, क्योंकि आपकी साधना इस साइड की है, और इस नाड़ी में आगे ऐसे वाल लगे हैं, इनमें से एक एक नाड़ी सुरंग और जाती है नीचे को, इधर जो विष्णु उपासक है ये फर्स्ट वाल में जाएगा, जब आप वहां पहुंचोगे ना यहाँ ऑटोमेटिक ये वाल खुल जाएगा, क्योंकि आपने भक्ति विष्णु लोक की कर रखी है, उसमें से आप एकदम नीचे गिर जाओगे, वाल बंद हो जाएगा, वापस नहीं आ सकते, उसमें से आप सुरंग में गए, भवन गुफा बनी हुई सब जगह ऐसे घूमते हुए विष्णु लोक में पहुंच जाओगे, वहां जाते आपका देव शरीर बनेगा, और फिर वहां आप रहोगे, अपनी कमाई खाओगे, और फिर उसके बाद 84 में चले जाओगे। इसके आगे देखिएगा, ये शिव उपासक है, ये इस वाल के अंदर घुस जाएंगे और वाल बंद हो जाएगा, ये विष्णु शिवलोक में चले जाएंगे, साधक जो योगी पुरुष है। आगे फिर वो लंबा विस्तार बना करके इस ऐसे ऊपर हो जाता है। ये सामने का जो रास्ता, ये ब्रह्मलोक में जाता है, ब्रह्मलोक में तुम नहीं जा सकते, तुम्हारी साधना विष्णु लोक की है, और ये राइट हैंड को जाता है, 88,000 खेड़े बने हुए इन सब ऋषियों को वहां पर ठाठ करवा रखे इस काल में, वहां उनका विवाह हो रहा है, उनका बालक से, और खूब ठाठम ठाठ कर रखे है, और जब वह पूरी हो जाएगी ना कमाई, उन्हें गले बना देगा ऋषिया ने, देवता ने, सारा ने। ये सामने जो सुराख है ये ब्रह्मरंध्र है, ये थारे बस का कोना खोलना। गरीबदास कहते हैं ब्रह्मरंध्र के घाट को खोलना था कोई एक, और द्वारे से फिर जाते ऐसे बहुत अनेक। तो कहने लगी ये जो ब्रह्मरंध्र है सतनाम से खुलेगा, ये जो ब्रह्मरंध्र है ये सतनाम से खुलेगा। सतनाम में दो अक्षर होते हैं, दो मंत्र होते हैं, एक मंत्र है ब्रह्म लोक तक जाएगा, और उसके साथ जो सतनाम लगा हुआ है वो सतनाम उस ब्रह्मरंध्र के ताले को खोलता है, और साथ में ये सतनाम आपका जो ऊपरला नाम है ये परब्रह्म तक प्रवेश कर देगा, भौर गुफा में पार करवा देगा। उसके बाद परब्रह्म के अंतिम छोर तक इस जो सतनाम का ऊपर वाला नाम जो अंदर लेते हैं श्वास के द्वारा, ये वहां तक ले जाएगा आपको, परब्रह्म के अंतिम सीमा तक। उसके बाद आपको सारनाम ले जाएगा, वो सतलोक में स्थाई स्थान दे देगा। तो कहने लगे फिर आगे कैसे जाऊंगा बच्चा, कि मैं पहुंचाऊंगा आपको। कबीर साहब ने सतनाम सिमरण किया, वो ऑटोमेटिक ताला खुल गया, ब्रह्मरंध्र खुल गया, स्वामी जी को अंदर ले गए। अंदर जाके उस काल को दिखाया नरेंद्र को, जो नरेंद्र लोक में बैठा जीव खाता है, उसको पार करके सतलोक पहुंच गए। सतलोक के अंदर एक बहुत सुंदर आसन बना हुआ है, स्टेज बनी हुई है भगवान के बैठने की, सतपुरुष की। वहां पर कबीर साहब वो पूर्ण परमात्मा दूसरे रूप में, एक बड़ी उम्र की आयु में, और उस आसन पर बैठे हैं, उनके ऊपर चवर हो रहा है ऐसे। उनके एक रूम में इतना चांदना निकल रहा जैसे करोड़ों सूर्य और करोड़ों चांद मिला दे। कबीर साहब उस सवर को हाथ में लेकर के कबीर उस भगवान के ऊपर सतपुरुष के ऊपर पूर्ण ब्रह्म से सवर करते हैं। रामानंद जी की आत्मा देख रही है। रामानंद जी ने सोचा कि भगवान का सतपुरुष तो ये है जो तख्त पर बैठा, और ये कबीर तो इसका कोई चेला तत्ता होगा, यानी यहाँ का कोई सेवक है। इतने में वो सोच रहे थे उस सतपुरुष खड़े हो जाते हैं, कबीर साहब उस आसन पर स्टेज पर विराजमान होते हैं। रामानंद सोचने लगे यू क्यों है भाई, ये क्या हुआ? और वो सतपुरुष उस छोटे से बालक पर सवर कर रहे हैं। इतने में वो सतपुरुष उस कबीर साहब में समा जाते हैं। अकेले वो बालक उस तख्त पर बैठे हैं, स्टेज पर बैठे हैं, और चवर स्वयं हो रहा है। इतने में रामानंद जी की आत्मा को ऐसे कर दिया सतपुरुष ने, कबीर भगवान ने। वापस वो समाधिस्थ स्थिति में था, वापस आ जाता जैसे मेडिटेशन खुल जाता है। सामने देखता कबीर साहब सामने बैठे उसी बालक के रूप में, पैर पकड़ दिए, हाथ जोड़ने लग गया कि आपने मेरा भ्रम तोड़ दिया मालिक, आप ही हो जो कुछ हो, आप ही पूर्ण परमात्मा हो, आप सर्वशक्तिमान हो, हम तुस जीवों के लिए आप यहाँ पर आए हुए हो। तो अब मैं आपको, जब इस रामानंद जी का भ्रम टूटा और छोटी जाति अन्य जाति वालों को नाम देना शुरू कर दिया, अब रामानंद जी की वर्चर्चा गरीबदास जी की वाणी के द्वारा भी आपको सुनाना चाहता हूँ। पांच वर्ष के जज्बे काशी मंज कबीर, गरीबदास अजब कला ज्ञान ध्यान गुण थीरे, गुल भया काशी पूरी अटपट बैन बिहंगे, गरीबदास जुल्हा गरीबदास गुण प्रसंग के कहे गुल भया काशीपुरी। ये हमारे सत्संग सुनकर जो जाते हैं ना भगवान, वो कई जगह चर्चा करते हो, यहाँ से उठ पटांग बात मारेंगे, एक महात्मा रहे वो गरुणा केकी केक कह रहा है, कहता ब्रह्मा विष्णु महेश भी कुछ नहीं है, इनसे ऊपर और शक्ति है, ये काल के अंतर्गत है, ये जीव का जन्म नहीं मिटा सकते। और सारे शास्त्रों में लिख रखे, गीता जी में लिख रखा, मैं कौन सा घर से बनाकर कह रहा हूँ, पर यह खुद ही काम करती बने लोगों की। ऐसे ही कबीर साहब जब ये लागे ना ये बात बताना, तो सारी काशी में चर्चा का विषय बन गया कि यो मेरा ना के ऊट पटांग मारे। हमने सुना ही नहीं था ये बातें जो आज सुनने को मिल रही है, जो आपने नहीं सुना था वो सुनाने आया हूं मैं, जो तुमने सुना था वो कंप्लीट नहीं सुना था, वो पूर्ण नहीं सुना था। शास्त्रों में लिखा हुआ है, आपने तो वो सुना भी कौन ही, अगर ये सुना होता तो मेरी समस्या आदि हल हो जाती आपकी, आप स्वतः स्वीकार कर लेते, आपने ये बुरा नहीं लगती मेरी बातें। यहां गरीबदास साहब कबीर साहब के बारे बताते हैं, उनके साथ ऐसी ही बनी थी। गुल भया काशीपुरी, उस काशी नगरी में सौर मासिया अटपटे बहन बिहंग, यानी अटपट बातें मारा से गिरणा के की कह रहा है, गरीबदास गुणी थके सुन दुल्हा प्रसंग। गुणी कहते हैं विद्वान पुरुष हार गए उस कबीर साहब के सामने, और इस कबीर साहब की बातों को सुनकर कि बिल्कुल सच्चाई तो जो की तुम्हारा जो ये बता रहे हैं, लेकिन वो अपने स्वार्थवश अज्ञानतावश, अज्ञानता कहूंगा क्योंकि उन्होंने अपना स्वार्थ कैसी का बना रखा है, इन भोली भाली आत्माओं को सतमार्ग दर्शन नहीं करवा रहे हैं। रामानंद अधिकार सुन जुल्हा अक जगदीश, दास गरीब गुलम नहीं कहीं नवा बख्शीश। रामानंद को गुरु कहे वो तन से नहीं मिलात, दास गरीब दर्श बहे पड़े लगी जोलात। ये कथा मैंने आपको सुनाई है ना, इसके बाद ये बातें आपको अंडरस्टूड होती चली जाएंगी जो मैं पढ़ कर सुना रहा हूं। पंथ चलत ठोकर लगी राम नाम के दीन, दास गरीब कसर नहीं वो सीख लगी परवीन। पंथ चलत ठोकर लगी, घाट पर जाते जाते उनके सिर में ठोकर लगी, यानी खड़ा होने लगी राम नाम के दीन। फिर ये पूछने लगा कि तू कौन है, तूने मेरे से नाम कब लिया था? कौन आडा पड़दा लाए कर रामानंद भूसंत, गरीबदास कुलंग सभी वो अगर धार कूदंत, आडा पड़दा ला के सामने और गुस्से में होकर वो कूद रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, नो मुंह दिखाने के लिए जैसे कुरंग माने मर्ग कूद जाकर खड़े ऐसे उछल रहा है गुस्से में। आडा पड़दा लाए कर रामानंद भूसंत, गरीबदास कुरंग छवि अदर धार कूदंत, अदर ढाक कूदंत, ने बोला कौन जात कौन पंथ है कौन तुम्हारा नाम, दास गरीब आधीन गति ही बोलत है बलि जाम। रामानंद ने बोले तू किस जाति का है और क्या तेरा नाम है और कौन सा तेरा पंथ है, वे ऑफ वर्षित क्या है तेरी और किस भगवान का तू नाम बताता है। तो गरीबदास बताते हैं कि कबीर साहब ने बोले जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंत, दास गरीब लिखत पड़े नाम निरंजन कंत। अब देख चाला पैट दिया कबीर भगवान ने, सच्चाई बताई रामानंद जी को कड़वी लगी। ने बोले जात हमारी जगत गुरु, मैं सबका उस्ताद हूँ, सारी ओवरऑल कंट्रोलर सबका गुरु हूँ, ब्रह्मा का गुरु विष्णु का गुरु शिव जी का गुरु मैं, यानी सबका जगत गुरु हूँ। और परमेश्वर है पंथ, मेरा जो मार्गदर्शन है ब्रह्मा विष्णु तक का नहीं है, इस निरंजन सारे ब्रह्म तक का नहीं है, ज्योति निरंजन तक का नहीं है, हमारा जो मार्गदर्शन है वो परमेश्वर का, परमेश्वर। अब यहां पर विचार करना आप, इस जना में वर ईश्वर, ईश्वर जना में परम जना में ईश्वर परमेश्वर, ईश माने भगवान मालिक, ईश्वर माने उस भगवानों का भी मां भगवान ईश्वर, जैसे मुनिवर ऋषिवर यानी मुनिवर भी हैं उनमें एक श्रेष्ठ एक उनमें श्रेष्ठ मुनिवर, वर माने पति भी होता है मालिक भी होता है यानी उनका मुखिया, अन्य ऋषि हैं तब तो एक मुखिया माना गया उसने ऋषिवर कहा उसे ऋषियों में श्रेष्ठ, ऐसे ईश्वर ईश भी है भगवान है उन भगवानों में श्रेष्ठ भगवान, वो कौन है ईश है ज्योति निरंजन ब्रह्म, ईश्वर है परब्रह्म और परब्रह्म से भी ऊपर परम ईश्वर परमेश्वर वो पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म ईश ईश्वर परमेश्वर। कहते मेरा जो पंथ है मेरा जो मार्गदर्शन है वो परमेश्वर का है यहां का नहीं है। जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लखत पड़े मेरा नाम निरंजन कंत। अने बोला मैं भगवान हूं, निरंजन का मतलब होता है भगवान, माया से रहित निरंजन बिना माया का माया रहित ईश्वर, ये ज्योति निरंजन है काल, ये भी भगवान से 3-21 ब्रह्मांड का, ये माया सहित भगवान है, ये खराब हो जाएंगे अंत में। एक तो नूनी घी होता है मक्खन जिसे कहते हैं वो भी घी कहलाता है, और एक शुद्ध घी होता है, शुद्ध घी खराब नहीं होता, और ये टिंडी का घी नूनी घी जो होता है ना जिसको मक्खन कहते हैं ये कुछ समय में बर्बाद बदबू हो जाएगी, ऐसा ये ज्योति निरंजन है। और ये बाकी जितने सारे नूनी घी है ये मक्खन है ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी समय पर समाप्त हो जाएंगे, लेकिन सतलोक में जो भगवान है वो घी है वो शुद्ध है प्योर है वो निरंजन है। जब भगवान का है ना 5 साल के बालक रो गरीब घर का, रामानंद कहता जी चिड़की उठी यानी बहुत दर्द लगा गुस्से हो गया, ने बोला अरे कुजाते अरे मंदबुद्धि के तो छोटी जाति का मुंह बात बड़ी, तुझे शर्म नहीं आई तो अपने आप को भगवान कहता है, नीच तुझे पाप लगेगा। अब वो क्या समझो भगवान ने यू सच्ची कह रहे उनको बुरा लग रहा है कि छोटा मोन बड़ी बात बताने लाग रहा, तो दबे गुनाने कम्मा बालक से। रे बालक सुन दुर्बोधि, तेरे घटमट नहीं अकारे, गरीब दास गरीब दर्द लग्या हो बोले सर्जन हारे। दर्द दर्द हुआ उसको इस बात का जब अपने आप को सृजनहार कहा कबीर भगवान ने कि मैं मालिक हूं, ओवरऑल कंट्रोलर हूं। और गुस्से में आकर कहा करें तुम मोमन के पालवा दूल्हे के घर बास, दास गरीब अज्ञान गति तेरा एताजर विश्वासी। अब जो कहते हैं ना तो मोमन यानी एक दुल्हा ने तू पाड़ा और बन बैठा भगवान, और नादान तो ऐसी ऊंची बात कहता है। मान बड़ाई छाड़े कर बोलो बालक बहन, इन ऊट पटांग बाता न तो रहने दो, जो मैं प्रश्न कर रहा हूं सीधा उतर दो। तू तो कौन है, क्या जाति है तेरी, तर्क कलो से बोलो तेरे रामानंद सुर ज्ञान, दास गरीब को जात है आखिर नीत निदान। सोमा के गुस्से में कितनी अपशब्द कह रही है अपने भगवान को रामानंद कबीर साहब को के बोलत रामानंद तलक तुर से बोलते रामानंद सुर ज्ञान, रामानंद जैसे महापुरुष और के बुंदी बात कहती है केवल के गरीब दास कुजात है आखिर नीच निदान। तो कुजात है श्री जात का बिना मेरा तू है कौन से का, क्या कित पाया था पड़ा हुआ है और आखिर में नीच है, इसलिए तो अपने आप को भगवान कह रहा है। अब के समझाओ तू नादान आत्मान हो कबीर भगवान की, यू के समझ रहा मुझे आखिर में के वो क्या कहे के मालिक, इससे भी बुरी गालियां दो मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि आप मेरे गुरु जी हो, गुरु जी जो भी कह दे हमें वो अच्छा लगा करे। और मालिक जो मैं आपको कह रहा हूं मैं यू का यू हूं, मैं के बदन खुला से करे सुन स्वामी सुर प्रवीण, दास गरीब मनी मरे मैं आज अधीन, मैं अवगत से परे हर चार वेद से दूर, गरीब दास दसो दिशा में सकल सिंध भरपूर, मैं अविगत यानी मेरी गत ने कोई नहीं जानता, इन चार वेदों से बाहर हूं, चारों वेदों में दो तीन स्थानों पर ऐसा प्रमाण है कि परमात्मा एक और है जो सतलोक में रहता है, लेकिन उसकी पाने की विधि नहीं है उसमें, वेदों में और गीता जी में उस परमात्मा के पाने का मंत्र नहीं लिख रखा, ओम मंत्र लिख रखा। ओम मंत्र केवल ब्रह्म तक ईश तक की प्राप्ति का है, बस उसका ज्ञान है पर उसके पाने की विधि नहीं है। यहां खोलोगे वो भी थोड़ी सी जानकारी डिटेल जानकारी कबीर साहब ने दी आकर विस्तृत जानकारी। मैं अवगत गपे तारे चार वेद से दूर, दास गरीब दसो दशा सकल सिंधु भरपूर, मैं सर्व व्यापक भी हूँ और सब जगह फैला हुआ हूँ दसो दिशा भरपूर, सकल सिंध भरपूर हूँ खालिक हमारा नाम, दास गरीब आजाद हूँ तें जो कहा बल जाऊं, मैं सर्व व्यापक हूँ और भगवान मेरा नाम है। खालिक माने भगवान, खलक माने दुनिया, दुनिया का मालिक खलक है, खालिक होता है खलक का मालिक खलक खालिक, सकल सिंध भरपूर हूँ खालिक हमारा नाम। अरे बोले भगवान मेरे जात को ही नहीं गुरुदेव, और आपने मुझे कुजात नीच छोटी जाति कहा, बलिहारी हूँ आप पे, आप कुछ भी कह सकते हो मुझे पर मेरे जाति नहीं है। सकल दास करीम आजाद हूँ आजादी हूँ तें जो कहा बलि जाऊं, ए स्वामी सृष्टा में ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमर तीर, सृष्टा कहते हैं सृष्टि के रचने वाला भगवान, अब सृष्टि कहते मेरे ही आश्रित है, सृष्टि हमरे तीर यानी मेरे ही किनारों बनी है या सारी सृष्टि ये मेरे आश्रय है। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमरे तीर,
सत्य कबीर मैं वो अविगत जिसकी कोई गत न जान नहीं सकता, सत्य कबीर वो सच्चा भगवान सत्य साहेब, मैं रूप में अधर रहता हूँ सतलोक में रहता हूँ, कौमी दरणी आकाश में मैं व्यापक सब ठोरे, गरीब दास ने दूसरा हम सुतल नहीं और हम समतुल नहीं और पौमी धरनी आकाश में सब जगह में व्यापक हो और मेरे बराबर इस पृथ्वी ब्रह्मांड में कोई नहीं है। हम समतुल नहीं और हम माने हमारे सम माने बराबर तुल माने योग्य हमारे बराबर कोई नहीं है। हम दासन के दास हैं कर्ता पुरुष करीम गरीब दास अवधूत हम ब्रह्मचारी सीम सुन रामानंद राम हम जो बोले सुन रामानंद राम हम और मैं बावन नरसिंह गरीब दास कली कली हम ही कृष्ण अभंग। अब ये बातें पीएचडी की आ गई यहां पर यानी इस भक्ति मार्ग का अंतिम स्थिति आ गई यहां पर इस ज्ञान की। जैसे प्रह्लाद के ऊपर आपत्ति आई थी आपत्ति जब प्रह्लाद पर आई थी तो उस समय नरसिंह बनकर भगवान आए थे। यहां कहते हैं कि विष्णु जी ने नरसिंह रूप बनाया था लेकिन यहां एक बहुत गहरी बात आपको बताना चाहता हूं ये नरसिंह रूप इस विष्णु जी ने नहीं बनाया था ये स्वयं सतपुरुष आए थे उन्होंने विष्णु रूप बनाया था और उस बच्चे की रक्षा करके उस राक्षस को समाप्त करके और विष्णु रूप दिखाकर वो इस विष्णु को शाबाशी दे गए थे लेकिन उनके हुक्म बिना ये नहीं कर सकते ये ऐसा बचाव नहीं कर सकते। ये विशेष आपत्ति थी भक्तों की इसको वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपनी मंजूरी से इसको अवॉइड करवाता है। इनके पास पावर नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु महेश उस भगत को बचा सकते थे। अब ये बातें आपका फेर खटकेंगे क्योंकि आपके पास ये ज्ञान पहुंचा ही नहीं है। बताता हूं एक बार हरियाणा स्टेट में राज्य में जैसे अब गुजरात के अंदर आपत्ति आई है प्राकृतिक आपत्ति आ गई ऐसे वहां पर सन 1995 में 95 में एक फ्लड आया था बहुत भयंकर है काफी लोगों के ट्यूबवेल मकाने विध्वंस हो गए थे फसल मर खत्म हो गई थी पशु मर गए थे। उसके लिए सरकार ने सरकार का बजट समाप्त हो गया था हरियाणा सरकार का वो नहीं कुछ कर सकती थी। सेंटर ने 600 करोड़ रुपया दिया था और भी ज्यादा दिया फिर 600 से भी काम नहीं चला। वो सेंटर ने जो पैसा दिया था वो पैसा सेंटर से चला था स्टेट में मुख्यमंत्री के खजाने में आया मुख्यमंत्री ने फिर आगे डिटेल बनवाई अपने कर्मचारी अधिकारियों द्वारा कि किस किस को कितनी हानि हुई है उनकी अक्षति पूर्ति के लिए पैसा वहां तक पहुंचाया गया। उसमें डीसी के पास आया डीसी ने आगे कर्मचारियों को नियुक्त किया कोई पटवारी कोई एसडीएम कोई तहसीलदार के जाओ गांव गांव में उनकी पूरी डिटेल लेकर के उनको पैसे वितरित कराओ सबको उनका किसी ने 10,000 किसी ने 20,000 किसी ने 5,000 अपने अक्षति अनुसार यह पैसा मिला था। एक समय की बात है कि वहां पर डिप्टी कमिश्नर जाता है दौरे पर वो कहता है कि मैंने फलाने व्यक्ति को इतना पैसा दे दिया फलाने को ऐसा लिस्ट बनी हुई थी तो वो सुनने वाले सुन रहे हैं इसने हमारे तो एक दे दिया देने वाला तो पटवारी था जिसने हमें दिया ये तो वैसे डींग मारना आया था अपनी। उसके बाद मंत्री का दौरा हुआ मंत्री ने उस गांव वाला लिस्ट पढ़ के सुना दी कि मैंने फलाने को इतना पैसा दिया उसको इतना दिया वो भी अपना चला गया। फिर मुख्यमंत्री आ जाता है मुख्यमंत्री कहता है कि मैंने फलाने व्यक्ति को इतना पैसा दिया उसको ऐसा दिया इससे दिया। फिर प्रधानमंत्री का दौरा आता है उस गांव की लिस्ट पढ़कर सुनाता है कि मैंने फलाने व्यक्ति को इतना पैसा दिया उसको ऐसा दिया उसको इतना दिया। वो सुनने वाले लोग सारे पागल इकट्ठे हो रहे हैं दोनों ने किसी ने दी नहीं दोनों पैसे दिए हमारे को पटवारी ने या तहसीलदार ने ये तो अपने नंबर बनाना रहे। तो हम आज इस स्थिति में हैं लेकिन वो सब ठीक कह रहे थे लेकिन सबसे ठीक कह रहा था प्रधानमंत्री वो भी अपने ठीक नंबर बना रहे थे क्योंकि उससे वहां आया वहां से वहां गया और वहां से वहां गया। ऐसे ही कबीर भगवान की शक्ति यहां काम करती है जब यहाँ पर विशेष आपत्तियां इन भक्तों पर आती हैं, जब ब्रह्मा विष्णु महेश से काबू से बाहर होती है। गीता इसमें भागवत में लिखा है, देवी भागवत महापुराण में, वो माया कहती है, पुत्र जब तुम्हारे कोई काम अट जाना, तुम्हारे बस का ना रहे, हमें याद कर लेना दोनों को, किसको, ज्योत निरंजन को, सनातन भगवान को, काल को और मेरे को, तुम्हारी आपत्ति निवारण कर देंगे। और जब इनसे भी अट जाता है, ये ऊपर याद करते हैं, ये उस पूर्ण परमात्मा को की तरफ अपनी अर्जी भेजे हैं, हाथ तोड़ते हैं। गोरखनाथ से कहा था कबीर साहब ने, कि तरह ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा, ये तरह ज्योत स्वरूपी भगवान यु काल भी मेरा ध्यान दरस है, मेरी पूजा करता जब मैं इसको टुकड़ा देता हूं, ये थारी सृष्टि चल रही है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, ये तीनों देवासा कहा भाई पात्र संसार, और रूट जो है जड़, वो कबीर भगवान है, सतपुरुष है, और जड़ से खुराक चलती है, यही समझ लेना, इतना काफी है। यहां क्या कहते हैं, सुन राम आनंद राम हम बावन नरसिंह, गरीबदास कली कली हम ही कृष्ण अभंग, कि ये बावन बोन ये हमारी आज्ञा से और हम ही बनकर आए थे, और ये रामा राम जो है ये भी हमारी शक्ति है, हमारे से ही उन्होंने परमिशन लेकर के ये अवतार बनकर आते हैं और हम इनको शक्ति देते हैं। अब प्रधानमंत्री कह सकता है कि डीसी में, डीएम में और एसपी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भी मैं हूं, एसडीएम भी मैं हूं और सीएम भी मैं हूं, वो कह सकता क्योंकि वो सर्व शक्ति संपन्न है, क्योंकि उसके पास ये सारी पावर्स विद्यमान है। ऐसे कवि साहब बोल रहे हैं, सुन राम आनंद राम हम, जिस राम ने तो बज रहा है ना, वो तेरा राम भी मैं हूं, क्योंकि वो मेरे हुक्म बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। सुन राम आनंद राम हम मैं बावन नरसिंह, गरीबदास कली कली हम ही कृष्ण अभंग, हम पानी हम पवन हैं, हम अग्नि धरण आकाश, गरीब दास तत्व पांच में हम जो शब्द निवास। अब तक कमान कर दिया, कहते मैं कैसे सर्वव्यापक हूं, ऐसे हूं जैसे पांचों तत्व के अंदर शब्द कंटिन्यूस है, कंस्टेंट है, शब्द हर तत्व में विद्यमान है, आकाश का गुण है शब्द, वायु का गुण है सप्रस, और अग्नि का गुण है रूप, और पानी का गुण है रस, और पृथ्वी का गुण है गंध सुगंध। इनमें जो हम आवाज बोल रहे हैं सुन रहे हैं, चारों तरफ से ये ब्रह्मांड को जैसे ब्लेडर बंद कर दिया जाता है, जैसे चारों तरफ से बंद कर रखा है, एक ब्रह्मांड को चारों तरफ से आकाश से बंद कर रखा है। अगर ये बंद नहीं होता तो हम बोल एक दूसरे को सुना नहीं सकते थे। जैसे स्पीकर को बंद कर देते उसमें आवाज आती है, स्पीकर फट जाता, फुसड़ फुसड़ करता, बोल नहीं सकता। तो ये जो गुण है, जो आवाज है, शब्द है, ये आकाश का गुण है, शब्द है तो आकाश भी है। उसके बाद अग्नि, अग्नि का है रूप, ये वस्तु दिखाई देती है, और उसमें जो आवाज आती है ना बकड़ बकड़, वो शब्द आकाश का गुण विद्यमान है, अपना गुण है रूप, यानी चीज दिखाई देती है, वो अग्नि जली तो दिखाई देने लगी। हाँ, वायु दूसरा गुण है, वायु, वायु का गुण है स्पर्श, हवा चलती है तो महसूस होती है भाई, काना अगर ठंडी ठंडी लगती है, कभी गर्म हवाएं चलती हैं, गर्म महसूस होती है, ये स्पर्श जो गुण है ये वायु का है, और ये इसमें सर सर की आवाज आती है, ये आकाश का गुण शब्द कंस्टेंट है। ऐसे तीसरा रूप अग्नि आता है, अग्नि का अपना गुण है रूप, और जो उसमें सर सर की आवाज बकड़ बकड़ की आवाज आती है वो गुण है आकाश का शब्द, और जो गर्म लग रही है ये वायु का स्पर्श गुण है इसके अंदर। ये तीन गुण अपने गुण के साथ दो गुण और इसमें विद्यमान है, जिसमें शब्द कंटिन्यूस चल रहा है। आगे पानी आता है, पानी का अपना गुण है खारा और मीठा लगना, ये स्वाद है इसका, और इसमें जो ऊपर से गिरेगा तड़ तड़ की आवाज आती है, ये आकाश का गुण शब्द है, ये ठंडा और गर्म लगता है ये वायु का गुण है, और ये दिखाई देता है ये अग्नि का रूप गुण है। इसमें शब्द कंस्टेंट है। आगे चौथा गुण तत्व है पृथ्वी। पृथ्वी का अपना गुण है महक। पृथ्वी के डले पर पानी डालिए मिट्टी के पर, उसमें से आपको महक आएगी, और वो महक इस पृथ्वी का गुण है। डले को दिखाई देता है ये अग्नि का गुण है, डला लगता है स्पर्श हुआ दर्द हुआ वायु का गुण है, ऊपर से गिरता आवाज आती है शब्द गुण है, दिमाग से हुआ आवाज ये शब्द आकाश का गुण है, और खारा और मीठा लगता हुआ डला वो उसमें पानी का गुण स्वाद है। इस प्रकार ये पांचों, जैसे पांचों तत्व में शब्द कॉन्स्टेंट टाइम से भिन्न हो ही नहीं सकता, ऐसे इन भगवाना की गेला में गेल रहता हूं। इन सारी पृथ्वी में ऐसे समाया हुआ हूं मैं, जैसे ब्रह्मा के साथ भी हूं, विष्णु के साथ भी हूं, और इस नरेंद्र भी पे मेरा ही आसरा है। गरीब दास तत्व पांच में हम ही शब्द निवास। हम धरणी हम पानी हम पावन है, हम धरणी अग्न आकाश। गरीब दास तत्व पांच में हम ही शब्द निवास। सर स्वामी सत भाक हो झूठ न हमरे रंचे, गरीब दास हमरे रूप बिना और सकल परपंच। अगर ये शब्द या शब्द आकाश नहीं होता तो ये सारे ग्रह ग्रह को की तर जाता, को की तर जाता, क्योंकि सारा ओवरऑल कंट्रोल आकाश ने कर रखा है इसको, उससे ये फिर इनके अपने गुरुत्वाकर्षण काम कर रहे हैं। आकाश का बाहर से बाउंड्री खत्म हो जाए, ये समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। गरीब दास हम रूप बिना और सकल प्रपंच। आवत जात न दिखे हूं रहता सकल समीप, गरीब दास चल तरंग हूं हम ही सायर सीप। मैं नगम क्षणाता जीता ना दिखता। फिर क्या कहते हैं, बोलत रामानंद जी हम घर बड़ा सुकाल, गरीब दास पूजा करे मुकुट फही जदमाल। अब चर्चा चल रही है रामानंद जी पहला गाड़ी गुड़ी दे कर उस कबीर साहब चाहे बोला तू बैठ जा तेने पाछे देखूंगा मैं, पर्दा लाकर पूजा कर रहा है वो माला अड़गी। बोलत रामानंद जी हम घर बड़ा सुकाहाल, भीतर भीतर मन में कह रहा काश बड़ा बुंडा जन आया भाई, बहुत बुरा दिन आया कि मेरी पूजा खराब हो रही है और मुकुट में माला फंस गई। गरीब दास पूजा करे मुकुट फही जदमाल, सेवा करो संभाल कर। कबीर साहब बोले बारते हैं, सेवा करो संभाल कर सुन स्वामी सुर ज्ञान, गरीब दास सर मुकुट अधर माला अटकी आन जान। स्वामी गुंडी खोल के फिर माला गलडार, गरीब दास इस भजन को जानत है करतारे। डोबी पर्दा दूर बगा लीना कंठ लगाए, गरीब दास गुजरी बहुत जब बदने बदन मिलाए। मन की पूजा तुम लखी फिर न बोले, मेरी बात को आपने सही पकड़ लिया। मुकट माल प्रवेश गरीब दास गति को लख, ये कौन वरण को भेख। रामानंद जी ने बोले भगवान तुम कुकुर मानना को परमात्मा, कैसे महसूस करे यू आर गॉड, कैसे। मन की से मन की पूजा तुम लखी, मैं तो मानसिक पूजा कर रहा था, तो मूर्ति बना भी ना रखी थी मैं तो, और मुकुट माल प्रवेश गरीब दास गति कौन लख, तेरा कौन वरण क्या भेख। ई बाप ने क्यों कोई भगवान माना मानने को, किस तो घर में पैदा हो रहे आ रहे जुलाए के घर में, और के आपकी वेशभूषा एक धोती एक टोपी एक कुर्ता, आपने भगवान क्यों कर माना, या दुनिया क्यों कैसे जाने आपको यू आर गॉड क्या परमात्मा हो। हम भगवान उनको तो मान लेते हैं जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र हो और शिव जी का हाथ में भाला त्रिशूल हो, क्योंकि उन डरते आप मान लें उनके विशेष आकर उनके बने हुए हैं आभूषण, ये इनके आभूषण है गहने। रामचंद्र में मान लेंगे तीर टांगरे क्योंकि लठाड़े ने तो सारे मान ले, और बिना डंडे वाले मानने मानना तो उसका से जैसे थान एक जगह देखा, हमारे गांव में एक फ्लड आई थी, डीसी आ गया और डीसी के साथ गनमैन, डीसी साधारण के पैंट कमीज में और बोधा था वो भी पतला, इधर दूसरे देश का, इधर बिहार की साइड का, और सावड़ा सा पतला सा, और वो टोपी टापी भी ना ला रहा था बेचारा, और कुर्सी पर बैठा और गनमैन दूर खड़ा, जोन सा भी गांव का है और एक थानेदार आ रहा, क्यों कुछ तो उस थानेदार ने गनमैन तो नौकर नमस्ते चौधरी साहब, और डीसी द्वारा नौ खड़े हो जाए उनका भाई लग गया, क्यों उनके पास वो बंदूक थी, पिस्तौल थे, डंडा दे रहे थे, वो तो जानते नमस्ते करे सारे, और डीसी द्वारा नौ खड़े हो जाए उनका रिश्तेदार से गई उनने नमस्ते भी ना करे खाकड़े, तो ये भी याद आओ बात, क्योंकि डंडे वाले ने आप मान लेते हैं, मानना तो उसको था ना, क्योंकि वो शक्तियुक्त है, उस उनसे तो ज्यादा शक्तिशाली था, उसको नहीं मान रहे थे, जब मानना जब मैं बेरा पटा रही तो भाई काम का आदमी से कई काम सार गया उनके, छोटी मोटी जो रिंग बांध गया अनुमति दे गया भी कल ही शुरू करवा देता हूं, जब उसको मानना फिर वो चलो थानेदार भी मानने थे, परंतु वो ज्यादा मानना पड़ा उन्हें, ऐसे ही कबीर साहब अपनी शक्ति युक्त है, ये दिखावा नहीं करते, इनको दिखावे की आवश्यकता ही नहीं है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश इसके बॉडी गार्ड है, इन बॉडी गार्ड ने जरूरत पड़ा बंदूक की, जब यहां ये आते ये रक्षक होते हैं इनके, सत बताऊं आपको, ऐसे ही ये बात समझ में आएगी जब यह बात आपको पूर्ण रूप से कबीर भगवान की शक्ति, और फिर ये आपको भगवान दिखेगा, इस बिना अपना भगवान दिखेगा नहीं, फिर है भी नहीं। मन की पूजा तुम लिखी ये मुकुट माल प्रवेश, गरीब दास गति को लख ये कौन वर्ण के भेख, तेरी महिमा ने कौन जाने किस तरूप में, किस वर्ण माने जाति मारे, अब किस वर्ण में किस जाति में, और के छोटा सा बॉडी बुच्चा के सा वेश बना रखा, तो ना भगवान मानने तो मानने क्यों करे, कबीर साहब ने बोला हम तो नियम मनवाया करा को मानने थे, ना मानने तो ठीक है, अपने भगवान थरे से अपने पूछते रहो बनोगे दे, और जाओ स्वर्ग में, तेरा सुतारी छुट्टा को ना काल की तपस्या थारी बचा को ना, और हमारी शरण में आ जा, काल देखे भी कोई नहीं आपकी तरफ, वो नजर भी नहीं आओगे, काल हमारे नाम से ऐसे डरता है, कहते हैं जैसे फनपति मंत्र सुन ये रख फन सकोरे, ऐसे बीरा मेरे नाम से यू काल लवे मुंह मोड़, जैसे फनपति यानी सर्प जिसने ऐसे फन फैला रखा था डसने के लिए, और गर्व मंत्र बोल देता है तो वापस कर लेता है और भाग जाता है, भागने की चेष्टा करता है, ऐसे ये काल निरंजन जो गीता में कहता सबने खाऊंगा मेरे सतनाम के सामने सारनाम के सामने, इसकी वो कला अक्षीण हो जाती है, ये आपकी तरफ देखेगा नहीं, आपको नहीं खाएगा, ये अपने न खाओगा जो इनको पूजते हैं, जैसे देवता पूजन थे वो खाए, ऋषि पूजन थे वो खाए, और आम जीव को तो खाना ही खाना है क्योंकि वो तो अनाथ है। अब रामानंद जी ने बोले ये तो शिक्षा तुम, ये तो तुम शिक्षा दे मान ली मन मोर, गरीब दास को मल पोरस और हमरा बदन कठोरे, जब जो कौड़ी उड़ी ना सीने से लगाए थे कबीर भगवान को रामानंद जी ने, तो तब कहते हैं कि आपका शरीर तो रूई के सा मालिक बहुत कोमल है और मेरा शरीर तो वज्र जैसा है, आप भगवान हो, आप पूर्ण परमात्मा यानी आपकी सूर्य शक्ति अवश्य है, अभी भी पूरी भी मान रहे हैं, तो फिर कहते हैं कि महाराज जी स्वर्ग की आशा त्याग दो और सतलोक की भक्ति करो, ए स्वामी तुम स्वर्ग की छोड़ो आसारीत, गरीब दास तुम कारणे हम उतरे शब्द अतीत, ए स्वामी जी आपके लिए आया हूं मैं, और ये सच्ची भक्ति बताने के लिए, ये भक्ति आपने संखों बार की है, अभी तक आपका जन्म मरण नहीं मिटा है, सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ू रीत, रामानंद जी कहते हैं कबीर भगवान से, सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ू रीत, गरीब दास गुजरी लगी ये जन्म जात है बीत, बोला बच्चा 104 साल की उम्र होगी। अब ये साधना तो मैं कर ही रहा हूं, चलो स्वर्ग तक तो पहुंचू, और कहीं वो तेरे वाली करने लग गया तो मैं घर का रहू ना गाठ का। कहते हैं सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ू रीत, गरीबदास गुजरी लगी मेरा जन्म गया सब बीत। और क्या महिमा गाते हैं स्वर्ग की रामानंद जी, चर मुक्ति बैकुंठ में, बैकुंठ माने स्वर्ग में, चर मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मेरे चाह, गरीबदास घर अगम की ही कैसे पाऊं था। चार मुक्ति बैकुंठ में यानी चारों में तो कोई सी तो मिलेगी मुझे, कोई ना कोई तो उपलब्धि होगी। इन चार मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मोरे चाह, और गरीबदास उस अगले घर की यानी सतलोक की कैसे पाऊं था, क्योंकि उसका हमने बीराई नहीं, ज्ञान ही नहीं है। और स्वर्ग में क्या बताते हैं, एम एम रूप जा धरती है रतन जड़े बहु सोहब, गरीबदास बैकुंठ को तन मन मेरा लोग। अब यू स्वर्ग तो ऐसा जो कर मेले का चा चढ़ा करता, छोटे छोटे बालक थे हम जब, मेरे गांव में एक मेला भरा करता शिव जी के मंदिर में, एक हफ्ते पहले चाचड़ जा करता मेले में जावांगे मेले में जावांगे, घर के दिन थे 2 रुपये, हम रो के लेते 5 रुपये, तो पहले 5 रुपये में घड़ा सौदा आ जाता था। और चाचड़ जाता मेले में जाएंगे, मेले में जानते कोख खिलौना लेते कि छोटी मोटी फल खा लेते, और संत रास्ते में वो खेलने टूट लेते, नोके नो खाली आया करते मुंह लटका के। तो ये स्वर्ग में चाहता चढ़ जाऊंगा स्वर्ग में, जाऊंगा स्वर्ग में, वहां खाका अपनी पूंजी ना उल्टे आओ तो मुंह लटकाए आया करेंगे, उनके पल्ले कुछ नहीं होता, भयभीत होकर आते हैं कि सारी पूंजी खोया है, आखिर में पल्ले कुछ भी कोई ना। तो यहां कहते हैं रामानंद जी को चाह सा चढ़ रहा है कि स्वर्ग को तो मेरा तन मन लोभ रहा, यानी उधर मेरी आकर्षण बना हुआ है। वहां पर के बताया हेम रूप जहां धरती है, हेम माने सफेद बर्फ कैसी, इसकी विष्णु लोक का भी सफेद रंग है, सफेदी सफेदी में फर्क होया करे, और सतलोक भी सफेद है, एक तो 0 का वाट हो मतलब सफेद और 1000 वाट का हो जाए, और फिर व्हाइटनेस में फर्क होता है, धीरे धीरे बहुत अंतर होता है। संक चक्र गला पदम है मोहन मदन मुरार, गरीबदास मुरली बजे वो स्वर्ग लोक दरबार। संक भगवान विष्णु बैठे बैठे दिखाई देंगे, उसके हाथ में संख चक्र गदा पदम है, और मुरली बजाते हैं, वह बजती रहती है मुरली, वो सुना करूंगा। कितने दिन सुनोगे महाराज जी, यह तो ना सोची आपने, कितने दिन रहोगे वहां पर, अब वो तो बेटा अपने कर्म अनुसार होगा। और नु बोला उड़ा दूधा की नदी बगे श्वेत वृक्ष सुभान, गरीबदास मंदल मुक्ति स्वर्ग पुर स्थान। रतन जड़े रतन जड़ाऊ मनुष्य है गण गंधर्व सब देव, गरीबदास उस धाम की भी क्यों कर छोड़ दो, से कैसे बढ़िया लोग की पूजा में क्यों कर छोड़ दो, वहां पर तो जितने मनुष्य ना देवता सब रतन जड़े हुए हैं और बड़े सुंदर लगते हैं। तो महाराज जी के विन की बुद्धि ने क्यों कर ठाया, सुइये उड़ा टिकी बांध दिए तक रखी है, ऊपर ना हाथ तक कर भी जाए उड़े आगे डट जाती है, यानी हमने ये स्वर्ग और ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे बात सुनी ही नहीं थी, हमारा टारगेटेड पॉइंट यहीं पर हो गया, हमारा लक्ष्य ही बन गया, इनसे ऊपर महाशक्तियां हैं, ये बहुत नमन सतर के भगवान हैं, ये केवल 3 लोक के ईश्वर हैं और 4 भुजा के हैं, इनकी माता 8 भुजा की है शेरा वाली, इनके पिता 1000 भुजा के हैं, और जो पूर्ण परमात्मा वो असंख्य भुजा बिना गिनती की भुजा के भगवान है। अब रामानंद जी कहने लगे भाई कबीर साहब एक बात बताऊं आपको, कि देख 88,000 ऋषि जितने हुए ये उसी भगवान को निरंजन को जप के और पार हो गए, पार नहीं हो रहे, पार हो जाए रोड़ा के था, फिर यह बुद्धि काम नहीं करती, तुम पार कहां हो गए, बैकुंठ में गए, स्वर्ग में गए, हाँ। और इसमें गीता जी में लिखा है कि कल्प के अंत में ये बैकुंठ रहना ना बैकुंठ में रहने वाले रहे, यह धरती भी पृथ्वी भी चांद भी तारे भी थर कृष्ण भी ब्रह्मा भी विष्णु भी शिव जी सारे खत्म हो जाएंगे, फिर कहां रहोगे स्वामी जी, कदी नो तो सोच लिया करो। पर इतनी सोचें तो बात फिर बन जाए, सोचें जब कोई ज्ञान मिले ऐसा सोचने दोगा, अब ये सत्संग कोई सुन देगा तो सोचना पड़ेगा उसमें, उसको ये विवश होना पड़ेगा कि यह बात जरूर कोई न कोई है, क्योंकि शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं कि अपने जो हिंदू, जिनको तुम हिंदू शास्त्र मानते हैं, हम तो इसको मानव मात्र के शास्त्र मानते हैं, इन शास्त्रों में ये बातें लिखी हुई है। क्या कहते हैं, स्वर्ग लोक बैकुंठ है या से प्रेरणा ओरे। रामानंद जी ने बोले चार वेद सठ शास्त्र, गरीबदास सठ शास्त्र और चार वेद की दौड़े, छहों शास्त्र और चारों वेद नो कहे स्वर्ग तो ऊपर कोई चीज नहीं से, और हमने इन शास्त्रों के आधार पर इसी पर आधारित हो गए इन स्वर्ग लोक के ऊपर। अब है तो पर इन्होंने समझ में को ना, इलख तो रखा इनसे ऊपर है, पर वो इनकी बुद्धि में ना बड़ी बात। गरीबदास जी महाराज कहते हैं वेद पढ़ने पर भेद न जाने, बांचे पुराण अठारह, जड़को अंदरा पान खवावे, बिसरे सरजन हारा। वेद पढ़ने पर भेद नहीं जाने, वेद माने ज्ञान, वेद का यहां वेद जो कहते हैं ज्ञान पढ़ते हैं, गीता जी भी नहीं पढ़े और फिर उसको मूर्ति के मुंह का भोग लगाओ, अकेले भगवान भोग लगा, अरे थोड़ा गजब हो। जड़ पत्थर को अंधा फिर पत्ते खुआवे, यानी तुलसी चढ़ावे और उसको भोजन खिलावे, और बिसरे सृजनहारा, भगवान का नाम भूल गए, जो गीता जी में कहा है कि नाम ओम नाम जपा कर अर्जुन और योगी बन जा, और सकाम योगी बन जा, जो घर में रहकर भक्ति करना और हवन करा करिए, बस ये तेरी स्वर्ग तक की प्राप्ति हो जाएगी। स्वर्ग लोक बैकुंठ है या से प्रेरणा ओरे, और गीता जी में लिख रखा हो भगवान और है, वेद में लिख रखा है यजुर्वेद के पांच में जाए के बत्तीसवें श्लोक में कि वो परमात्मा जो बंदी छोड़ है और सारी सृष्टि का रचने वाला वो सतलोक में रहता है। बताओ और क्यों कर लिखेंगे वेद, पर वे ऑफ वर्शिप नहीं है उसमें, उस परमात्मा के पाने की, ना गीता जी में है और ना ही वेदों में, वो कबीर साहब ने बताया। सोहम मंत्र जो है ये कबीर साहब ने आके प्रकट किया, ना वेद में है ना गीता जी में है ना रामायण में ना महाभारत में, सोहम शब्द नहीं है। गरीबदास जी कहते सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए, सार शब्द नहीं दिया इनको, ये सोहम शब्द ला दिया। सोहम शब्द से पारब्रह्म तक की उपलब्धि हो सकती है, लेकिन पूर्ण मुक्ति नहीं होगी उससे भी, इसके ऊपर एक सार शब्द है, सार नाम है, वो सतलोक ले जाएगा। ओम जाप है ब्रह्म का, और ये एक मंत्र बनता है सतनाम, ये आपको कट्ठा दोनों भक्ति करा देगा, यहां की भी पूरी कर देगा और ऊपर भी ले जाएगा। इसके ऊपर एक सतना सारनाम और लगता है, वो आपको सतलोक ले जाएगा। शेष अठासी जिसे रटे गांव शेष गणेश, गरीबदास बैकुंठ से और पर को देश। पता इनकी बुद्धि नो काम निगरी से महापुरुष होकर चले गए, नो को हाँ शेष अठासी जिसे रटे, उस निरंजन भगवान की पूजा करते हैं ब्रह्म की, और गांव शेष गणेश, ये गणेश और शेष जैसी जिसकी पूजा करते हैं, गरीबदास बैकुंठ से और पर कौन सा देश, इस स्वर्ग तो ऊपर और कौन सा देश हो गया। अब गीता जी में वो कहते हैं कि अर्जुन देख रहा कि आप तो इन ऋषियों को भी खा रहे दोष की पूजा कर रहे थे, और यहां उड़े फिर गीत गाने गए शेष अठासी दिशे रटे और गांव शेष गणेश, उनने उनकी पूजा तय के लाभ ले लिया, जो भगवान उन्हीं को उनका जो पूज्य भगवान और उन्हीं को खा रहा है, अब फिर घुमा फिर करोड़े फिर सुई आ जाती है इन लोगों की। पर गीता के पढ़ी ऋषि जी आपने, अब पढ़ाई कबीर साहब ने जब सारी समझ में, असली पढ़ाई जब समझे जब उसने स्वयं दिखा दिया सतलोक। अब गरीबदास जी ने बोले सुन स्वामी निज मूल गति कै समझाऊं तो हे, गरीबदास इस भगवान ने यू राख्या जगत सम्मोहे। अब सच्ची बात बता दूं, सच्ची बिल्कुल जड़ बता दूं तुझे कि तुम्हारे इस निरंजन भगवान ने ये सारी इन जीव आत्माओं को सम्मोहित कर रखा है, सम्मोहित करके ये एक दूसरे के साथ फंसा रखे, यू बेटा तेरा या बेटी तेरी, आज मर जा फिर कोई किसी का कोई ना, गधे बनो और गधी बन जाओ, सुअर बन जाओ। ये थारे भगवान ने सम्मोहित कर रखा है सारे संसार को। और फिर क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश ने ये जड़ाए हैं जीव, गरीबदास तीन लोक में ये काल क्रम और शिव, ये तुम्हारे ब्रह्मा विष्णु महेश ने जीवों को उड़ जा रखा है। ये कबीर साहब कहते हैं। अब ये महसूस होगा जो भगवान ब्रह्मा और विष्णु के उपासक होंगे, नहीं